नमस्कार भारत, तारीख 13 सितंबर दिन बुधवार, मैं हूं वात्सल्य राय। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे आज से दो दिन के भारत दौरे पर, स्वागत में सजा अहमदाबाद।
अहमदाबाद में दिवाली से पहले दिवाली आ चुकी है, अहमदाबाद की सड़कों को चकाचौंध किया गया है रोशनी से।
उत्तर प्रदेश सरकार की ऋण माफी योजना से किसानों को शिकायत, भारतीय जनता पार्टी दे रही है सफाई।
अगर किसी किसान ने अपना ऋण चुकता किया हो लेकिन एक रुपए, डेढ़ रुपए, दो रुपए अगर बचा रह गया है तो वो भी उस दायरे में आ गया है, इसलिए वो भी माफ।
और झारखंड में पुलिस कर्मियों की मदद के लिए नई पहल, हेल्पलाइन के जरिए की जा रही है तनाव घटाने की कोशिश।
अपने किसी भी समस्या को झारखंड पुलिस मैन एसोसिएशन के हेल्पलाइन नंबर पे लिखावे, हम तुरंत उसका समाधान करेंगे, आपको तनाव में आने की जरूरत नहीं है।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेती से। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे दो दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। शिंजो अबे अपनी यात्रा के दौरान दो दिन गुजरात में रहेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। गुरुवार को दोनों नेता अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। अबे की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि वह शिंजो अबे का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी के अलावा जापानी भाषा में भी ट्वीट किया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित ट्रैवल वैन को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक जज बैन की कानूनी वैधता पर कोई फैसला करें, तब तक मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाई जा सकती है। इससे पहले एक अपीलीय अदालत ने फैसला दिया था कि अगर पुनर्स्थापन एजेंसियां शरणार्थियों को सुविधाएं देने का आश्वासन दें तो 24,000 शरणार्थी अमरीका में प्रवेश कर सकते हैं। म्यांमार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था के प्रमुख के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाकर की जा रही सुरक्षा कार्रवाई को जातीय नरसंहार करार दिया था। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए म्यांमार के राजदूत थिन लिन ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके लिए रोहिंग्या उग्रवादी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, मानवता के खिलाफ अपराध और जातीय नरसंहार जैसे शब्द बेहद गंभीर होते हैं। इन्हें बहुत जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक म्यांमार इस तरह के अत्याचारों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं मानवाधिकार संस्था के प्रमुख जईद राद अल हुसैन द्वारा इस्तेमाल इन शब्दों पर म्यांमार की कड़ी आपत्ति दर्ज कराना चाहूँगा। ये थे संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार के राजदूत थिन लिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमेर ने देश की न्यायपालिका पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका नियंत्रण से बाहर हो रही है। टेमेर ने कहा कि भ्रष्टाचार के अप्रमाणित आरोपों को छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भ्रष्टाचार की जाँच के सिलसिले में टेमेर पर इस हफ्ते और भी मामले दर्ज होने की संभावना है। तुर्की के रूस से हवाई रक्षा प्रणाली खरीदने के कदम का अमेरिका ने विरोध किया है। हालांकि तुर्की ने अमेरिका की इस आपत्ति को गैर वाजिब करार दिया है। तुर्की के यूरोपीय संघ मामलों के मंत्री उमर सेलिक ने कहा कि अमेरिका और जर्मनी का तुर्की से मिसाइल रोधी प्रणाली हटाने का फैसला गलत था। सेलिक ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुद्दा तुर्की को हथियारों का निर्यात रोकने को लेकर है। सवाल यह है कि तुर्की किन वजहों से इन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इन हथियारों का इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए हो रहा है। इस तरह के फैसलों से आतंकवाद के खिलाफ तुर्की की लड़ाई कमज़ोर होगी। तुर्की को इससे कोई नुकसान नहीं है। तुर्की तो वैसे भी हर हाल में अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इस्लामिक स्टेट के चरमपंथी अब यूरोपीय देशों की राजधानियों तक पहुंच गए हैं। ये थे तुर्की के मंत्री उमर सेलिक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान ने 8 साल बाद अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बहाली का जश्न जीत के साथ मनाया है। पहले T20 मैच में मंगलवार को पाकिस्तान ने विश्व एकादश को 20 रनों से मात दी। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने बाबर आजम के बेहतरीन 86 रनों की बदौलत 5 विकेट पर 197 रन बनाए। जवाब में डुप्लेसिस की कप्तानी में खेल रही विश्व एकादश 20 ओवरों में 7 विकेट पर सिर्फ 177 रन ही बना सकी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। भारतीय वक्त के मुताबिक आधी रात के बाद अमेरिका में कैलिफोर्निया के नए नवेले स्टीव जॉब्स थिएटर में एप्पल ने अपने स्मार्टफोन की 10वीं सालगिरह के मौके पर आईफोन 10 की झलक दिखाई।
दिस इज आईफोन 10। इट इज द बिगेस्ट लीप फॉरवर्ड सिंस द ओरिजिनल आईफोन। एंड टू टेल यू ऑल अबाउट इट, आईड लाइक टू इनवाइट फिल बैक अप।
देयर इज नो मोर होम बटन। This is an important part and a big step forward in the iPhone user experience. I know what you're thinking about.
Apple ने जानकारी दी कि इस फोन में होम बटन नहीं होगा और इसे फेस आईडी यानी चेहरे की झलक के जरिए अनलॉक किया जा सकेगा। नमस्कार भारत में हम इस फोन की और इसके साथ पेश किए गए iPhone 8 और 8 Plus की खूबियों और कीमत के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के भारत दौरे की खबर से। जापान के प्रधानमंत्री आज भारत जापान सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान वो कल यानी गुरुवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत के पहले हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट यानी बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर तिरंगी रोशनी में जगमगाते अहमदाबाद की तस्वीरें पोस्ट की हैं। मोदी ने लिखा है कि अहमदाबाद और भारत प्रधानमंत्री शिंजो अबे का स्वागत करने को तैयार है। जापान के प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने अहमदाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता रॉक्सी छारा से बात की और सबसे पहले आज के स्वागत की तैयारियों के बारे में ही पूछा।
अहमदाबाद में दिवाली से पहले दिवाली आ चुकी है। अहमदाबाद की सड़कों को चकाचौंध किया गया है रोशनी से। आज करीब 3:30 बजे जापान के प्रधानमंत्री अबे शिंजो और नरेंद्र मोदी ये दोनों ही वीआईपी एयरपोर्ट से निकलकर 8 किलोमीटर का जो अंतर है वो काटकर गांधी आश्रम पहुंचेंगे। ये जो 8 किलोमीटर का अंतर है इसके बीच में करीब 28 अलग अलग मंच बनाए गए हैं जहां पर स्कूल के बच्चे परफॉर्मेंसेस करते रहेंगे। तो ये एक तरह से एक रोड शो है जिसमें दोनों वीआईपीज ये मंच पर जो परफॉर्मेंसेस हैं वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे और ये 8 किलोमीटर का अंतर 15 मिनट में काटकर वो लोग गांधी आश्रम तक पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि गांधी आश्रम में वे आधा घंटा बिताएंगे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी आश्रम के बारे में अबे शिंजो को बताएंगे। शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबे शिंजो को अहमदाबाद की सीधी सैयद नी जाली पे लेकर जाएंगे और वहां पर वो गाइड बनकर सीधी सैयद नी जाली की जो बारीकियां हैं उसके बारे में अबे शिंजो को बताएंगे।
जापान के निवेश और बुलेट ट्रेन को लेकर गुजरात में किस तरह का उत्साह देखते हैं आप उद्योगपतियों में खासतौर पर?
जी, कल सुबह यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री अबे शिंजो दोनों ही यहाँ पर साबरमती रेलवे स्टेशन जो है उसके पास में शिलान्यास करेंगे बुलेट ट्रेन का। कहा जा रहा है कि बुलेट ट्रेन का जो अहमदाबाद टर्मिनल है वो साबरमती आश्रम के पास बनेगा और यहीं से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने की संभावना है। देखिए, गुजरात और जापान के बीच में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप काफी अच्छे रहे हैं पहले से। कल शाम को यहाँ पर जो गुजरात और जापान के बीच में जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप रहे हैं उन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेड एंड कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड एनर्जी का एक सेमिनार भी रखा गया है जिसमें अलग अलग क्षेत्र के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट आकर पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो गुजरात और जापान के बीच में जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसकी बात करेंगे।
इस साल के अंत में गुजरात में चुनाव भी है और ऐसे में शिंजो अबे का ये दौरा और उससे लेकर इतनी चकाचौंध, क्या देखेंगे आप इसका असर चुनाव में?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक उनकी एक स्टाइल रही है कि वो जब भी इलेक्शन ईयर हो उसमें इस तरह का कुछ करते हैं जिससे कि लोगों में एक संदेश जाए कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो उसी तरह से शायद 2017 की जो इलेक्शन की बात है उसके पहले ये इस तरह का कार्यक्रम करना ये लोगों तक एक संदेश तो जरूर पहुंचाएगा कि अब अहमदाबाद में, और क्योंकि बुलेट ट्रेन एक बहुत ही प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट माना जा रहा है तो वो अहमदाबाद से जब शुरू होगा, गुजरात से शुरू होगा तो लोगों में उसका एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा।
जानकारी दे रहे थे रॉक्सी छारा। भारत और जापान के आर्थिक रिश्ते काफी मजबूत हो रहे हैं। इन रिश्तों पर एशिया के दूसरे देशों खासकर चीन की भी नजर होती है। इन रिश्तों की मजबूती और चीन के नजरिए को जानने के लिए हमारे साथी मोहम्मद शाहिद ने जापान के टोक्यो में सोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुकेश विलियम्स से बात की।
जापान और भारत के बीच जो संबंध है उसमें काफी परिवर्तन आ रहा है और ये बात चीन को पता ही पसंद नहीं है। गुजरात जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ पे 50 जापानीज कंपनियां हैं और जापान सोर्सेज के अनुसार जापान जो है काफी लोन उस जगह दे रहा है, एक स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं मगर एक जनरल लोन दे रहा है ताकि उससे जापानीज कंपनीज जो हैं उनका भी उससे फायदा हो। जापान ये सोच रहा है कि आने वाले वक्त में जापान का इन्वेस्टमेंट है कंपनीज का गुजरात में और हिंदुस्तान में वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलेट ट्रेन उससे बहुत फायदा होगा, वैसे लोग बहुत कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी, हिंदुस्तान गरीब देश है, मगर ये बात तो लोग कहते ही हैं। वो बहुत बिजी एरिया है बिजनेस के हिसाब से और लोगों के पास इतनी आमदनी है कि वो बुलेट ट्रेन को इस्तेमाल कर सकें और इससे जो इंडियन कंपनीज हैं उनको काफी फायदा होगा।
भारत में जो निवेश हो रहा है जापान की तरफ से तो उसको लेकर जापान में किस तरीके का माहौल देख पाते हैं आप?
देखिए, एक तो ये है कि इस वक्त जापान में भी जो कंपनियां हैं वो हिंदुस्तान की तरफ देख रही हैं और उसमें काफी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है और बहुत सी कर भी रही है। आपको जैसे पता है कि गुजरात में कितनी ज्यादा जापानीज कंपनी आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और जापान का जो समझौता है बिजनेस में वो काफी बढ़ेगा, मगर उसके आगे भी चीज है, जापान क्यों करना चाह रहा है। तो जो जापान की जो समुद्री सुरक्षा है पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में है उसको लेकर और किस तरीके से नॉर्थ कोरिया को निपटाएं और साथ में मिलकर हिंदुस्तान के, मेरा ख्याल है इसके पीछे ये राज भी काफी है, ये सिलसिला या ये मकसद जिसको कह सकते हैं आप इसमें है। जिस तरीके की स्थिति जियोपॉलिटिकल बन गई है चीन के साथ जापान और भारत के बीच, उससे तो ये लगता है कि जापान और भारत जो है काफी करीब आ रहे हैं और जैसे कि चाइनीज मीडिया बता रहा है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं है।
पहले चीनी राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग जिनका अहमदाबाद में स्वागत किया गया था दिल्ली की जगह, शिंजो अबे जैसे दूसरे कोई राजनेता है जिनका अहमदाबाद में स्वागत हो रहा है, तो इसको किस तरीके के एक संदेश के रूप में देखते हैं पहले चीन और अब जापान?
देखिए, चीन के साथ हमारी जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे नहीं और उसकी हमारे पास 1962 से ट्री बनी हुई है। एक जमाने में था कि हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे, वो नारा खत्म हो गया है, मगर जापान के साथ कोई हमारी ऐसी बुरी रिलेशनशिप नहीं रही है हिस्ट्री में, तो सब चीज अच्छी ही नजर आ रही है फिलहाल।
ये थे मुकेश विलियम्स।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने के बाद किसानों की ऋण माफी का जोर शोर से ऐलान किया, लेकिन किसानों को ऋण माफी के लिए जितनी छोटी रकम के प्रमाण पत्र मिल रहे हैं उसे वो खुद के साथ मजाक बता रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर सफाई दे रही है। पूरा ब्यौरा सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में किसान को जब 10 रुपए के कर्ज माफ होने का सर्टिफिकेट मिला तो वो सिर पकड़ कर बैठ गए, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि कर्ज माफी की ये न्यूनतम सीमा नहीं है बल्कि 1.5 रुपए का भी कर्ज माफ हुआ है तो उन्होंने अफसोस करना ही बंद कर दिया। राज्य सरकार की ऋण माफी योजना के पहले चरण में कई जिलों में किसानों को समारोह पूर्वक ये प्रमाण पत्र बांटे गए हैं। बुंदेलखंड में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। ज्यादातर अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से बच रहे हैं, लेकिन बांदा के मंडलायुक्त अजय शुक्ल ने इस बारे में जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।
आज डीएम साहब ज्वाइन किए, मैंने उनसे कहा है कि ज्वाइन करने के बाद मुझे रिपोर्ट दे दे। रिपोर्ट मैं आपको जैसे डीएम की रिपोर्ट प्राप्त होगी मैं आपको बताऊंगा।
सरकार ने 1,00,000 रुपए तक के फसली ऋण माफ करने की घोषणा कर रखी है। किसानों को पहले तो सिर्फ फसली ऋण की माफी पर ही आपत्ति थी, लेकिन अब उन्हें जो मिल रहा है उससे वो और परेशान हैं। बुंदेलखंड के किसान नेता शिव नारायण सिंह परिहार कहते हैं कि ऐसा करके सरकार ने किसानों के साथ मजाक किया है।
क्योंकि ये आज से कार्यक्रम नहीं चल रहा है, ये कई महीनों से ये तैयारी चल रही है ऋण माफी की, तो ये कहीं ना कहीं जानबूझ कर साजिश की गई है, चाहे सरकार की तरफ से हुई हो, चाहे बैंकों की तरफ से हुई हो या लेखपालों की तरफ से। लेकिन सर, जो किसान वहाँ प्रमाण पत्र लेने गया था, जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े मंच बनवाए, खाना पीना की व्यवस्था की गई, वहाँ पे सिर्फ इन्होंने अपना प्रचार सरकार दिया और किसानों का हित भूल गए और इससे किसान बड़ा दुखी है। जो बेचारा गया था वहाँ मंच पर कि मेरा 1 लाख का ऋण माफ होगा, मेरा कर्जा चुक जाएगा कुछ हद तक, वो भी नहीं होगा।
इटावा, हमीरपुर, मेरठ, बांदा, ललितपुर जैसे जिलों के तमाम किसानों के इसी तरह के ऋण माफ किए गए हैं। हमीरपुर के किसान का कहना था कि 10 रुपए की ऋण माफी का सर्टिफिकेट लेने के लिए उन्हें 60 रुपए किराया भी खर्च करना पड़ा। 10 रुपए, 150 रुपए, 180 रुपए जैसी राशि की माफी सुनने में भले ही अजीब लगती हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि जिनका जितना कर्जा था सब माफ किया गया है, वो चाहे 1 लाख रुपए हो या फिर 1 रुपया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी,
अगर किसी किसान ने अपना ऋण चुकता किया हो लेकिन 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए अगर बचा रह गया है उस ऋण के अमाउंट में या इंटरेस्ट 1-1.5-2 रुपए का बचा रह गया है तो वो भी उस दायरे में आ गया है, इसलिए वो भी माफ हो गया है। 1 लाख रुपए से कम की राशि वो कोई भी हो, पैसे में भी हो, तो वो उस दायरे में आएगी क्योंकि वो 1 लाख से कम है, इसलिए वो माफ कर दी जाएगी। ये भी जांच करने का भी विषय होगा कि वो ऋण उनका फसली ऋण है या कोई अन्य ऋण है।
कर्ज माफी योजना के तहत राज्य के करीब 2.25 करोड़ किसानों के 30,729 करोड़ रुपए के कर्ज माफ होने हैं, जिससे सूखे और बाढ़ की वजह से हुए नुकसान की भरपाई हो सके। लेकिन जिन किसानों के इस तरह के कर्ज माफ हुए हैं, ये पैसे उन्हें सूखे से राहत दिला पाएंगे या फिर बाढ़ से, ये वही बता सकते हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
आगे बढ़ने के पहले एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली से छपे अखबारों की सुर्खियों पर। दिनेश उप्रेती मौजूद हैं अखबारों के साथ।
जी, तलाक के लिए 6 महीने की बाध्यता खत्म, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है।
कूलिंग पीरियड खत्म कर दिया गया।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के धारा 13(b) में दी गई अवधि निर्देशात्मक भर है, आवश्यक नहीं।
जी,
ग्रेचुटी की सीमा दोगुनी होने की खबरों को भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। अब ग्रेचुटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है और इसके लिए कोई टैक्स नहीं देना होगा।
हाँ, ये तो इंटरेस्ट की खबर है लोगों के।
जी, डोकलाम विवाद खत्म होने के बाद चीन ने कहा है कि वह मानसरोवर यात्रा के लिए सिक्किम में नाथुला दर्रा फिर खोलने के वास्ते बातचीत करने के लिए तैयार है। इसके अलावा दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हट गई है, अमर उजाला ने इस शीर्षक के साथ खबर को पहले पन्ने पर छापा है। पाइनियर ने स्वाइन फ्लू से मौतों की खबर को पहले पन्ने पर छापा है। अखबार लिखता है कि स्वाइन फ्लू से इस साल अब तक देश भर में 1415 मौतें हुई हैं।
1415
मौतें हुई हैं, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 265 ही था। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देती है तो वह कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए तैयार है।
जी, आजकल वो अमरीका के दौरे पर हैं।
जी, अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यह फैसला कांग्रेस पार्टी को करना है और प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि भारत में वंशवाद की राजनीति सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि सभी दलों की समस्या है।
जी, और उन्होंने कल क्या कहा, बहुत शुक्रिया आपको शुक्रिया करने के साथ। मैं ये अपने श्रोताओं को सुनाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने कल क्या कुछ कहा।
I'm absolutely ready to do that, but the way our party works, we have an organizational election process that decides that.
राहुल गांधी कह रहे थे कि वो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इस बारे में फैसला पार्टी को लेना है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत की राजनीति में बड़े तौर पर परिवारवाद मौजूद है। उनके इस बयान को लेकर BBC संवाददाता हरिता कांडपाल ने वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवई से बात की।
देखिए, राहुल गांधी इस बात को छुपाना नहीं चाहते हैं कि वो एक वंशवाद से उनको लाभ हुआ, बल्कि वो जनता में एक तरह की एक संवाद स्थापित करना चाहते हैं कि देखिए, जहां वंशवाद की बात है वो भारत की राजनीतिक सभ्यता का एक हिस्सा बन गया है और तमाम दल जैसे भाजपा के बहुत से ऐसे नेता है या समाजवादी पार्टी है या अकाली दल है, छोटी बड़ी बहुत से क्षेत्रीय दल है, DMK है, वो तमाम दलों में जो है वो वंशवाद का दौर चल रहा है, तो राहुल गांधी इसको करके अपने आप को बचाना चाह रहे हैं।
BJP अक्सर इस बात पर गांधी परिवार को घेरती रही है और राहुल गांधी ने उन्हें एक और मौका दे दिया। कल BJP ने उन पर जमकर हमला बोला।
जी देखिए, इस समय जो कांग्रेस का और जो राहुल गांधी का जो एक पॉलिटिकल ग्राफ है बहुत नीचे है, तो अगर भाजपा उन पे हमले बोलती है, स्मृति ईरानी सामने आती है और एक तरीके का एक विवाद और कॉन्ट्रोवर्सीज और बयानबाजी होती है जिसे मीडिया में चर्चा में आती है, उसका निश्चित रूप से लाभ जो है वो राहुल गांधी को होगा, क्योंकि उनकी बात को सत्ताधारी दल है उसका मंत्री जो है आके उनको जवाब देने की कोशिश करता है और जनता के बीच में जो राहुल गांधी ने मुद्दे लाए हैं उसको चर्चा में लाता है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि राहुल गांधी को कई बार मौके मिलते हैं, चाहे वो मंदसौर में किसानों पर गोली चलने का वाकया हो या उससे पहले भट्टा परसौल में हो या जो नोटबंदी की बात हो, राहुल गांधी उसमें शुरुआत तो अच्छी करते हैं लेकिन बिल्कुल एकदम से फिर वो गायब हो जाते हैं सीन से।
उन्होंने अपने वहां पर जो बातचीत थी उसमें उन्होंने ये भी कहा कि 2012 में जो है कांग्रेस में एक तरह का एरोगेंस आ गया था, उन्होंने गलती मानी अपनी पार्टी की।
देखिए ये प्रथम दृष्टि में ये एक स्वागत योग्य बात है कि एक राजनीतिक दल का एक बड़ा नेता जो अपनी हार को या अपनी कमी को कबूल कर रहा है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो सिर्फ मान लेने से कि क्या हमसे गलतियां हुई या हमें एक एरोगेंस का माहौल आ गया था कांग्रेस में उस समय, तो उसके लिए राहुल गांधी क्योंकि उस समय भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, महामंत्री थे, और सोनिया गांधी जो कांग्रेस अध्यक्षा तब थी और अभी भी है, तो इसमें उस 2012 से लेकर अब तकरीबन 5 साल होने को आए हैं, तो इसकी कांग्रेस ने कोई उसमें सुधार किया? आज भी कांग्रेस पार्टी जो है वो एक राहुल गांधी का एक खेमा है और एक कुछ सीनियर लीडर हैं वो सोनिया गांधी को अपना लीडर मानते हैं, और राहुल गांधी कब कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, कब नई तरह की कांग्रेस की सोच शुरू होगी, इसके बारे में बहुत ही भ्रम की स्थिति है।
राहुल गांधी ने पहली बार कहा कि वो प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि सवाल ये है कि अभी तक वो अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है और लोकसभा में भी जो है वो विपक्ष के नेता नहीं है।
जी देखिए, राहुल गांधी ने पहली बार कहा है कि वो 2019 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे और दावेदार है, ये अपना उन्होंने एक दमखम जताने की कोशिश की है जिससे हो सकता है कि कांग्रेस में थोड़ी सी लोगों को उम्मीद नजर आए। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि उसके लिए तैयारी क्या है, क्या राहुल गांधी जो है वो लोकसभा में एक मेंबर के नाते सक्रिय होंगे, क्या वहाँ पर जो बहुत सारे विपक्ष जो बिखरा हुआ है क्या इन सबको लेकर के जैसे बिहार में एक महागठबंधन की एक शुरुआत हुई थी उस तरह से राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई होगा, या कांग्रेस अपने दमखम के ऊपर चुनाव लड़ेगी, अगर अपने बूते पर लड़ना है उसका रोड मैप क्या है, तो ये बहुत सारे प्रश्न है दीपक की दावेदारी करना।
ये थे राशिद किदवई और उनसे बात कर रही थी हरिता कांडपाल। उधर झारखंड में एक महीने के दौरान 5 पुलिसकर्मियों की कथित खुदकुशी के बाद एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, इसे पुलिसकर्मी ही चला रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ रांची से नीरज सिन्हा।
इस हेल्पलाइन में कोई आम शख्स नहीं, पुलिस के जवान अपनी परेशानी, उलझन और तनाव के बारे बताते हैं। दरअसल हाल के दिनों में राज्य के अलग अलग हिस्सों के थाना परिसर और बैरक में 3 जवानों की मौत कथित तौर पर सर्विस राइफल से खुद को गोली मारने और 1 जवान की मौत फंदे बनाकर झूल जाने से हुई है। इनके अलावा 1 जवान की मौत कथित तौर पर अपनी राइफल की गोली लग जाने से हुई। इन मौतों से पुलिस महकमा सख्ते में है। संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष राकेश पांडे इस बात पर जोर देते हैं कि जवान किसी हाल में कोई गलत कदम नहीं उठाएं।
जो आत्महत्या करते हैं वे कायर का काम है, वैसा ना करें। अपने किसी भी समस्या को झारखंड पुलिस मैन एसोसिएशन के केंद्रीय पदाधिकारी या हेल्पलाइन नंबर पे लिखावे, हम तुरंत उसका समाधान करेंगे, आपको तनाव में आने की जरूरत नहीं है।
हालांकि मौत के इन मामलों में अस्पष्ट कारणों को लेकर छानबीन जारी है, लेकिन संघ के महासचिव रमेश उराव मानते हैं कि वे लोग चिंता में हैं।
हाँ, ये तो चिंता का बात है, इसमें हम लोग पहल भी कर रहे हैं कि इसका कारण क्या हो सकता है, वही कारण ढूंढ निकाल रहे हैं कि आत्महत्या करने का या तो सुसाइड करने का जो भी कारण है, डिप्रेशन का कारण ढूंढ रहे हैं कि समय से लोग को छुट्टी नहीं मिल रहा है या तो पारिवारिक विवाद है।
यह हेल्पलाइन पुलिस मेंस दफ्तर में खोला गया है और इसके लिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी जारी किए गए हैं। कुछ ही दिनों में 100 लोगों ने हेल्पलाइन से मदद मांगी है। आखिर पुलिस में तनाव की वजह क्या, इस सवाल पर राकेश पांडे कहते हैं,
वक्त से ज्यादा काम लेंगे और वह ठीक से सोएगा नहीं, ठीक से खाएगा नहीं, ठीक से अपने परिवार से बात नहीं कर पाएगा, तो वास्तविक रूप से तनाव में आ जाएगा। सिविल सर्विसेज में क्या है कि कोई भी किरानी है तो वो अपने शाम में अपने घर चले जाते हैं, वो अपने बीवी बच्चे के साथ रहते हैं, और जो ऑफिस में उनके साथ गलत सही हुआ रहता है उसको अपने पत्नी बच्चा से शेयर करके दूर कर लेते हैं।
हमने पुलिस की अन्य समस्या जानने की कोशिशें की। देवचंद मुंडा बताते हैं कि जब पुलिस की तनख्वाह 425 रुपये थी तो कर्तव्य भत्ता 65 रुपये मिलता था, अब यह तनख्वाह 30,000 तक है तब भी कर्तव्य भत्ता 65 रुपये ही है, वर्दी भत्ता भी निराश करने लायक है।
पुलिसकर्मी को ड्यूटी के दरमियान वर्दी एकदम 2 टाइम्स पहनना पड़ता है, उसमें बूट है, बेल्ट है, टोपी है, बैच है, वर्दी है, मच्छरदानी है, कंबल है, ग्राउंड शीट है, सारे व्यवस्था अपने ही 4,000 रुपये में करना है, चूंकि 4,000 रुपया में पॉसिबल नहीं हो जाता है, चूंकि दो ही वर्दी में हम लोग का तो 4,000 रुपया लग जाता है लगभग।
इस बीच रांची रेंज के डीआईजी एबी होमकर एसएसपी कुलदीप द्विवेदी ने पुलिस हेल्पलाइन के संचालन को लेकर सकारात्मक पहल की है। डीआईजी एबी होमकर का कहना है,
काफी इनिशिएटिव तो हुए हैं और अच्छे इनिशिएटिव चल रहे हैं, बाकी हम लोग इसका भी ध्यान रखते हैं, योगा इत्यादि का भी अभी उन लोगों को स्पेशली ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सभी यूनिट्स में योगा टीचर्स की बहाली की गई है, सो दैट अपने से भी वो सीख जाए कि अपने शरीर को और अपने इसको कैसे तनाव फ्री रख सके।
बहरहाल हेल्पलाइन में आए मामलों को सुलझाने में पुलिस महकमा कितना गंभीर रहता है यह देखना बाकी होगा। नीरज सिन्हा, बीबीसी रांची।
अमरीकी कंपनी एप्पल लेकर आ रही है एक ऐसा फोन जिसका पासवर्ड इस्तेमाल करने वाले का चेहरा होगा। यह है आईफोन 10। क्या है इसकी खूबियां, बता रहे हैं हमारे साथी दिनेश उप्रेती।
गैजेट के शौकीनों के लिए मंगलवार की रात कुछ खास रही। आईफोन की 10वीं सालगिरह के मौके पर एप्पल ने 3 नए फोन लॉन्च किए, आईफोन 8, 8 प्लस और आईफोन 10। 9 जनवरी 2007 को एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया था। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ये प्रोडक्ट अमेरिका में एप्पल के कैलिफोर्निया स्थित मुख्यालय में स्टीव जॉब्स थिएटर में लॉन्च किए। आईफोन 10 के लुक्स ही इसे दूसरे आईफोन से अलग खड़ा करते हैं। इसमें कोई होम बटन नहीं है और स्क्रीन पर नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप कर होम पर जा सकते हैं। इसमें चेहरे की पहचान यानी फेस रिकॉग्निशन अनलॉक सिस्टम है और साथ ही पासकोड की सुविधा भी। इसके टॉप पर इंफ्रारेड कैमरा है जो अंधेरे में भी यूजर के चेहरे की पहचान कर सकता है। आईफोन 10 में 3D टच फीचर और वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी मौजूद है। आईफोन 10 पर पानी और धूल का भी असर नहीं होगा। इसे पर्ल सेंट इफेक्ट के साथ सिल्वर और स्पेस ग्रे कलर में लॉन्च किया गया है। इसमें वाइड एंगल 12 मेगापिक्सल कैमरा है और कीमत $999। इसकी बिक्री 3 नवंबर से शुरू होगी। डिस्प्ले की बात करें तो आईफोन 10 में 5.8 इंच का सुपर रेटिना HD डिस्प्ले होगा, आईफोन 8 प्लस में 5.5 इंच और आईफोन 8 में 4.7 इंच का रेटिना डिस्प्ले होगा। आईफोन 10 और 8 प्लस में 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और टेलीफोटो कैमरा है, जबकि आईफोन 8 में सिंपल 12 मेगापिक्सल कैमरा। आईफोन 10 में 7 मेगापिक्सल ट्रू डेप्थ फ्रंट कैमरा है, वहीं आईफोन 8 और 8 प्लस में 7 मेगापिक्सल फेस टाइम HD कैमरा है। आईफोन 10 में फोन अनलॉकिंग के लिए फेस आईडी की सुविधा है, वहीं 8 और 8 प्लस में टच आईडी की सुविधा। बैटरी की बात करें तो आईफोन 10 की बैटरी आईफोन 7 से 2 घंटा ज़्यादा चलेगी, वहीं 8 प्लस और आईफोन 8 की बैटरी आईफोन 7 जितनी ही चलेगी।
जानकारी दे रहे थे दिनेश उप्रेती। अगर खेल की दुनिया की बात करें तो पाकिस्तान ने कल लाहौर में खेले गए एक 2020 मुकाबले में वर्ल्ड 11 को 20 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट पर 197 रन बनाए, इनमें से 86 रन बाबर आजम के बल्ले से निकले। जवाब में वर्ल्ड 11 7 विकेट पर 177 रन ही बना सकी। दूसरा मैच आज खेला जाएगा। वक्त आपसे विदा लेने का हो रहा है, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे 2 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। शिंजो अबे अपनी यात्रा के दौरान 2 दिन गुजरात में रहेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित ट्रेवल वैन को हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक जज वैन की कानूनी वैधता पर कोई फैसला करें, तब तक मुस्लिम देशों से अमेरिका आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाई जा सकती है। म्यांमार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था के प्रमुख के उस बयान को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाकर की जा रही सुरक्षा कार्रवाई को जातीय नरसंहार करार दिया था। ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमेर ने देश की न्यायपालिका पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका नियंत्रण से बाहर हो रही है। पाकिस्तान ने 8 साल बाद अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बहाली का जश्न जीत के साथ मनाया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान थी शाकिर आलम के हाथ। फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया भूमिका ने। शाम 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। कार्यक्रम होगा दिन भर। तब तक देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं bbchindi.com का। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।